समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे।
दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। Yes, the fervor of patriotism is right around the corner because Republic Day is just 2 days away from here. आज 24 जनवरी हो चुकी है। 26 जनवरी की जो धूम है वो अभी दिल में कह सकते हैं महसूस हो सकती है। सरफिरोजी के साथ सायरा आपका खैर मकदम कर रही हैं। यस, रिपब्लिक डे इज जस्ट राउंड द कॉर्नर एंड दिल तो हाजिर रहता ही है। जहां तो हमेशा कह सकते हैं कि जब वक्त आता है कि हमारे जवान तो सबसे आगे हैं ही हैं और उनका जोश बढ़ाने के लिए हम लोग भी हैं, बट ऑफकोर्स जितनी भी कैपेसिटी में जिससे हो सकता है वो अपने हिसाब से सर्विस देते ही है।
सायरा बात कर रही हैं 24 जनवरी की, तो अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज यानी 24 जनवरी का जो दिन है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि 1950 में आज ही के दिन जन गण मन को औपचारिक रूप से देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। और कार्यक्रम में इस बारे में भी आगे अच्छी चर्चा होगी।
That's right, and namaskar, adab, and a very warm welcome to all our listeners to yet another fresh episode of Parikrama. Yes, this is the name of the show is Parikrama. So, aap jante hi hain, desh ki parikrama pe niklenge. We'll go to different parts of the country where our correspondents are waiting with some interesting stories. But our Dateline India segment will comprehensively, you can say, cover a lot of subjects today. So, wo kafi interesting rahega aapke liye. Apart from that, ye gana jo hum log ne bajaya, of course, since Republic Day is just 2 days away from here, but today is also Subhash Ghai's birthday, and this iconic song is from one of his films, Karma. So we'll probably give a tribute to Subhash Ghai's illustrious career as well in our last segment. But first, let's start with the headlines, Sarfirozi.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत और विदेश में युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने रोजगार मेले के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए।
यूरोपियन कमीशन वाइस प्रेसिडेंट काया कालस अराइव्स ऑन अ 3-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। न्यू दिल्ली सेज इट विल फर्दर स्ट्रेंथन द इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली, हिंसा के अंत और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की मांग की।
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे।
और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से।
Yes, now we throw open the show with our special segment, Dateline India. And as mentioned, we are going to cover some very interesting and very informative topics today. We are going to talk about the PM Vishwakarma Heart and recognition of Jan Gana Mana as the national anthem and Vande Mataram as the national song on this day in 1950 by the Constitution. So, 24 जनवरी की बहुत अहमियत है। पहले बात करते हैं लेकिन विश्वकर्मा हाट की।
बिल्कुल सायरा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट 2026 का आज से शुभारंभ दिल्ली में हो रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ये प्रदर्शनी शिल्पकारों और कारीगरों को समर्पित है और इसका उद्देश्य देश की समृद्ध पारंपरिक शिल्पकला की विरासत को प्रदर्शित करना है।
That's right, Sir Firozi. This is not just an exhibition. It's a vibrant living marketplace where India's traditional crafts continue to evolve, connect, and reach newer audiences. Organized by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises at Dilli Haat in INA from 18th to 31st of January, the Haat will be open daily from the morning 10:30 a.m. till 10 o'clock at night. And alongside handcrafted products, the Haat features live craft demonstrations including pottery, bangle making and doll making, as well as some cultural performances that are surely to leave you wow. It will make it an immersive experience that extends beyond a conventional marketplace. We have a report.
इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हथकरघा कारीगरों के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, हितधारकों और आम जनता के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रदर्शनी में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 117 से ज्यादा कारीगर हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रदर्शनी पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने और रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद करेगा। इसमें पारंपरिक कलाओं की एक बड़ी रेंज, लाइव क्राफ्ट डेमो और सांस्कृतिक अनुभव भी शामिल है। विश्वकर्मा हाट कारीगरों को सशक्त बनाने, पारंपरिक कौशल का संरक्षण और एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सकलिंग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
सितंबर 2023 में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना गांव के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को फॉर्मल मार्केट सिस्टम से जोड़कर इन्हें सशक्त बनाने के लिए व्यापक पहल के रूप में सामने आई है। ये योजना शुरू से आखिर तक सहायता देती है, जिसमें पीएम विश्वकर्मा पहचान पत्र और सर्टिफिकेट, 500 रूपये के दैनिक स्टाइपेंड के साथ कौशल प्रशिक्षण, 15,000 रूपये का मुफ्त टूल किट और बिना गारंटी के ऋण तक पहुंच तथा डिजिटल लेन देन अपनाने के लिए प्रोत्साहन शामिल है। वित्तीय और कौशल विकास सहायता के अलावा ये योजना पीएम विश्वकर्मा हाट जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट लिंकेज पर भी जोर देती है, जिससे कारीगर अपने उत्पादों को बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के सामने प्रदर्शित करके ब्रांड बनाकर उन्हें बेच सकते हैं। 22 जनवरी 2026 तक इस योजना को चयन के लिए 2,72,00,000 आवेदन मिले हैं और लगभग 30,000 कारीगरों को रजिस्टर किया गया है। बहुत बड़ी संख्या है, कह सकते हैं सायरा।
दैट्स राइट सरफरोजी। और अगर अपने लिसनर्स को और बताएं पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में, सो अंडर दिस स्कीम आर्टिजन्स दे रिसीव स्किल ट्रेनिंग, अ टूल किट एंड ऑल्सो एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, मोर सिग्निफिकेंटली अ प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्स देयर क्राफ्ट टू एंगेज विद द मार्केट ऑन इक्विटेबल टर्म्स। This is not just a procedural requirement, but a pathway to growth. With support from the PM Vishwakarma scheme, including training and tools, entrepreneurial growth leads to broader community empowerment.
और सायरा, प्रदर्शनी की बात करें तो जो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं उनमें इतनी वैरायटी है कि कश्मीर के जो फेरन हैं, कुर्तियां हैं, वहां से लेकर 1.5 फीट से ज्यादा ऊंची बारीकी से तराशी हुई पत्थर की मूर्तियों को भी डिस्प्ले के लिए रखा गया है।
और सर फिरोजी, आप देख सकती हैं कि मुझे तो फेरन बहुत ज्यादा पसंद है।
मैं देख सकती हूं, मैं अक्सर आपको देखती हूं, आप कैरी करती हैं फेरन।
दैट्स राइट। और मेरी गो टू डेस्टिनेशन हमेशा दिल्ली हाट होती है, बिकॉज दैट इज वन प्लेस जहां पे हमारे भारत के ऑथेंटिक आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बिकॉज दे आर डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द आर्टिजन्स।
और इसके अलावा मिनिस्ट्री ब्रांडेड शॉपिंग बैग देखने को मिल रहे हैं प्रदर्शनी में, जो कारीगरों के लिए पैकेजिंग का खर्च कम करने में मदद करते हैं। और सायरा, इसके जो एक और फायदा है शॉपिंग बैग का, वो ये है कि कारीगरों को अलग से प्रमोशन नहीं करना पड़ता, वो इट्स सेल्फ जो शॉपिंग बैग है वो ही मोबाइल प्रमोशनल टूल का काम कर रहे हैं।
दैट्स राइट। ईच स्टॉल इज ऑल्सो इक्विप्ड विद अ ब्लैक कार्ड दैट इज इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, प्रोवाइडिंग विजिटर्स विद ट्रांसपेरेंट and credible information about the artisan that includes the name, the place of residence, contact details, nature of the enterprise, even monthly production capacity and the willingness to undertake bulk or customized orders as well. Because we all see these days, you know, we have seen a change coming in the society, Zarfirozi, these days people don't prefer gifting bouquets, but you know they prefer gifting plants. इसी तरह corporate gifts में भी एक change देखा गया है, that they don't just go for those very extravagant lavish gifts, but जो artisans से directly procure किए जाते हैं, many companies are now resorting to that. So people who want to give bulk orders for gifting, for anything, they should just आंख बंद करके आप जाइए दिल्ली हाट आज, मतलब 31 जनवरी से पहले पहले, isn't it? And this is a seemingly modest feature, but it effectively converts a temporary stall into a professional micro-enterprise interface. It reinforces trust and also facilitates repeat transactions and sustained market linkages. These fairs succeed because artisans choose to return. Participation is not viewed as a one-time opportunity, but as part of a credible and functioning ecosystem that artisans recognize and trust. And the biggest thing, especially if we participate, especially for the artisans, is that they don't have to pay any stall charges.
Mm-hmm.
The government gives them a platform, you know, free of cost to display and directly sell their products mm-hmm. to the people. So, jo private exhibitions hoti hai usme bahut sa pehla to ye hota hai ki रेंट निकल जाए स्टॉल का, बट यहाँ पे आर्टिजन्स को ये सोचने का नहीं मौका
मिलता। इसलिए हम कह रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना की जो अंतर्गत है कारीगरों को शुरू से लेके अंत तक सहायता दी जा रही है, उसमें रेंट अगर आपको नहीं देना पड़ रहा तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ी मदद है।
एब्सोल्युटली, सो व्हाटएवर प्रॉफिट्स यू आर मेकिंग यू डायरेक्टली फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट फ्रॉम योर फर्स्ट सेल यू आर टेकिंग बैक होम। एंड गवर्नेंस इज मेड विजिबल नॉट थ्रू जस्ट प्रोसीजर्स ऑफ पेपर वर्क but through tangible outcomes that directly support livelihoods. Collectively, these outcomes support the government's broader development vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas by building trust at the grassroots, strengthening livelihoods under Atmanirbhar Bharat, and steadily advancing the goal of Viksit Bharat at 2047 through inclusive and market-linked growth. तो ये तो बात हो गई विश्वकर्मा हार्ट की और विश्वकर्मा स्कीम की। जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसकी तो आपने शुरू में
जिक्र कर ही दिया था प्रोग्राम की शुरुआत में ही,
तो आप बताइए कि आज की जो 24 जनवरी है उसकी क्या खास अहमियत है।
जैसा हमने बताया कि आज ही के दिन संविधान ने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी थी, और 24 जनवरी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से आयोजित 18वें राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि ये वही दिन है जब जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया।
आज का दिन भी विशेष है, आज के ही दिन हमारे संविधान ने जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था।
And if we remember, Sir Firozi, that just in the beginning of this year, the CEO of Prasar Bharati, Gaurav Dwivedi, had launched two versions of the national song, Vande Mataram, from Akashvani Bhavan in New Delhi itself. The versions were digitally released as part of the 150th anniversary commemoration of Vande Mataram. Also have a report, let's listen to it.
The powerful call of Vande Mataram echoed not only in voices but also came alive in the colors and symbols of India's freedom struggle. It appeared on several early versions of the national flag, each design reflecting the dreams and determination of people longing for independence. In 1904, Sister Nivedita designed the Vajra flag, with Vande Mataram written in Bengali. The flag soon became a strong symbol of resistance, seen in meetings and rallies during the partition of Bengal, and later displayed proudly at the Calcutta Congress in 1906. The first flag that gained pan-Indian recognition was hoisted at Parsi Bagan in Calcutta on the 7th of August in 1906. Designed by Sachindranath Bose and Sukumar Mitra with the support of the Secret Anushilon Society, the flag had three horizontal bands with green on top, yellow in the middle and red at the bottom. On the yellow strip, the words Vande Mataram were written in Devanagari script. The Calcutta flag, also known as the Vande Mataram flag, has undergone multiple contemporary reiterations, each bearing the sacred words Vande Mataram. It soon became a powerful emblem of India's unity and hope. In 1906, Bipin Chandra Pal launched a daily journal titled Vande Mataram and invited Sri Aurobindo to join him. Through its pages, Vande Mataram became more than just a slogan. It became a movement of thought, courage and national pride. With Shivang and Soumya, this is Valsa Williams for Akashvani News.
Vande Mataram, Vande Mataram.
बिल्कुल सायरा, वंदे मातरम महज एक धुन नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की चिरस्थायी भावना है और इस वर्ष का जो गणतंत्र दिवस समारोह है वो भी बहुत खास हो रहा है सायरा, क्योंकि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के साथ ही भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का अनूठा संगम इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में हमें देखने को मिलेगा। ये समारोह आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के साथ राष्ट्रीय गीत को एक अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित करेगा।
That's right, Sir Firozi. Today is also another special day. Today is National Girl Child Day, and it was initiated by the Ministry of Women and Child Development and was first observed in 2008 in our country. The day was established to address critical issues such as child marriage, female feticide, gender inequality. और सबसे पहले कहते हैं ना कि सबसे पहली शुरुआत अगर कहीं से की जाती है वो आपका अपना घर होता है और सबसे it's still unfortunate that many people only talk about so-called empowering the girl child, but I have a problem with the word empower. Empower मतलब किसी के पास already पहले से ताकत है, वो अपनी ताकत दूसरे को दे रहा है. Whereas it's very important to recognize the power innate strength of the female itself, because males and females are two different beings. They are equal, but they are different, and both need each other equally, isn't it? It's not a competition and a tug of war that is happening, but nonetheless, we still have a lot of things to fight in our society.
बिल्कुल सारा, हमें अपनी बेटियों को जो है वो ऐसा वातावरण बनाकर देना है, एक मंच प्रदान करना है जहां वो सशक्त नागरिक के रूप में आगे बढ़ सके,
और वो मंच सबसे पहला आपका अपना घर होता है। तो सबसे पहले जैसे कि कहा जाता है ना कि बेटियों को सीख देने से पहले कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो, यानी आप अपने बेटे को भी बताएं कि भाई तुम बाहर जा रहे हो, दूसरी की बेटियों को थोड़ा इज्जत से देखना, इज्जत से बात करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद दैट लेट्स रैप अप आवर सेगमेंट डेटलाइन इंडिया।
और सायरा, कार्यक्रम में अब वक्त है अपने श्रोताओं को देश की परिक्रमा पर लेकर चलने का।
That's right, and देश की परिक्रमा आज हम लोग शुरू करेंगे from the southern state, the God's own country that we called from Kerala. Kerala has entered a new phase of rail connectivity with introduction of its first set of Amrit Bharat Express trains. It's a move that has generated considerable interest among passengers across the state. Let's hear more from our Thiruvananthapuram correspondent.
Travelers have welcomed the new train, saying they address long-standing need for reliable and reasonably priced long-distance trains. Many passengers, including students, migrant workers, traders and families, said the improved coaches, better seating and upgraded passenger information systems make the journeys less tiring without the higher costs that are associated with the premium trains. This is a big relief for people who travel frequently between states for work or studies, said a commuter at Thiruvananthapuram Central. The trains are also being seen as a boost for regional mobility, with expectations that smoother connectivity will encourage tourism, trade and cultural exchange. The Thiruvananthapuram Central Tambaram Amrit Bharat Express connects Kerala's capital with key industrial, educational and medical hubs in Tamil Nadu. Running via major stations such as Tirunelveli, Madurai and Tiruchirappalli, the weekly service is expected to benefit people from southern Tamil Nadu by improving access to healthcare, education and business opportunities. Passengers from border regions noted that the train could reduce dependence on overcrowded express services while offering better comfort at similar prices. Similarly, Thiruvananthapuram North Charlapalli Amrit Bharat Express strengthens rail links across Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana, passing through major centers including Ernakulam, Coimbatore and Nellore. Students and professionals believe this route will make industry travel more affordable. Meanwhile, the Nagarkovil Mangaluru Amrit Bharat Express running along Kerala's coastline has been welcomed by the coastal community and traders, who say it could support tourism, fisheries and small business by improving west coast connectivity. Overall, the public response about these new services are very positive. Most of them are viewing Amrit Bharat Express as a practical and inclusive step towards rail travel in the southern states. Midhi M. Pallurathi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान की ओर और वहां की भी हलचल देंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं महिला क्रिकेट की। महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग में आज शाम वडोदरा में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में रॉयल चैलेंजर्स की टीम शीर्ष पर है।
And in men's cricket, India defeated New Zealand by 7 wickets in the second T20 at Raipur last night to take a 2-0 lead in the 5-match series.
श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्वों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
We remember freedom fighter and commander of Azad Hind Fauj, Captain Shahnawaz Khan, who was born on 24 January 1914.
Shahnawaz rose to the rank of the captain in the 14th Punjab Regiment during the Second World War and was captured by the Japanese after the fall of Singapore in 1942. He was profoundly influenced by Subhash Chandra Bose's speeches asking captured Indian soldiers to join the Indian National Army and to fight for a free India. Shahnawaz led the Indian National Army into northeastern India, claiming Kohima and Imphal, which were held briefly by the Azad Hind Fauj during the Second World War. In December 1944, Shahnawaz Khan was appointed commander of the 1st Division at Mandalay.
After the war, the INA officers Prem Kumar Sehgal, Shahnawaz Khan and Gurbakhsh Singh Dhillon were tried for waging war against the King Emperor in a public court-martial at the Red Fort in Delhi. Despite the stirring defense put forward by Congressman Bhula Bhai Desai, who was Chief Defense Counsel, the court found the three commanders of INA guilty of treason and sentenced to death. The sentence was committed by the Commander-in-Chief of the Indian Army following unrest and protests in India.
After the trial, Khan declared that he would henceforth follow the path of non-violence espoused by Mahatma Gandhi and join the Congress Party. In 1946, Shahnawaz Khan accompanied Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan to restore peace in Noakhali. After independence, Khan had an illustrious parliamentary career and was elected 4 times to the Lok Sabha from Meerut constituency. He died on 9th of December 1983. We salute the great Indian nationalist.
We also remember revolutionary freedom fighter Phulan Bihari Das, who was born on January 24, 1877 in Faridpur, erstwhile Bengal Presidency. He established the Dhaka Anushilan Samiti and formed around 500 branches in the province. He also constructed the National School in Dhaka to develop a revolutionary army. The students were trained in the use of various weapons.
In the year 1908, Phulan Bihari led revolutionaries in the Bara Dacoity at the Bara Zamindars' residence in the district of Dhaka. He was detained by the British Indian police along with Ashwini Datta, Subodh Malik, Krishna Kumar Mitra, Shyam Sundar Chakravarti and Bhupesh Chandra Nag. Phulan Bihari Das was imprisoned in the Montgomery jail. When he was released in 1910, he renewed revolutionary activities. He was again arrested along with 46 other Indian revolutionaries on charges of treason and agitation under the Dhaka conspiracy case.
Phulan Bihari Das was transferred to the cellular jail where he met with revolutionaries including Vinayak Damodar Savarkar, Barinder Kumar Ghosh and Hem Chandra Das. In 1918, he was released but was kept under house arrest for 1 year. He again attempted to revive his revolutionary activities, but the association was banned.
He established the Bharat Sevak Sangh in the year 1920 and later published 2 periodicals titled Swaraj and Hak Katha. In 1928, he formed the Bangiya Byayam Samiti at Mechua Bazar in Calcutta. It was an institute of physical culture and effectively an akhada where he began to train young men. Later, he came under the influence of a yogi and the feeling of non-attachment grew in him. He died on the 17th of August 1949. We salute the great revolutionary.
और श्रोताओं, अब हम याद कर रहे हैं संगीत के एक महान कलाकार को जो भारत रत्न सम्मानित शास्त्रीय गायक थे. हम बात कर रहे हैं भीमसेन जोशी जी की. ये भारतीय संगीत की जीवंत परंपरा के प्रतीक थे. इनके कंठ से गूंजते कलिए ख्याल और भजन ने संगीत प्रेमियों के दिलों को छुआ. ये कहते थे कि संगीत का असली उद्देश्य भावनाओं का संचार और आत्मा का पोषण है. आज भी उनकी गायन शैली सभी श्रोताओं के लिए प्रेरणा है और अब आपको सुनाने जा रहे हैं भीमसेन जोशी के स्वर में एक गीत जो राष्ट्रीय एकता और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है।
मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में, मिले बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के।
अब हम जय ओम प्रकाश जी को याद कर रहे हैं। इनका आज जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों के एक ऐसे प्रतिष्ठित निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने अपने समय में कई यादगार फिल्में दी। इनकी फिल्मों में एक खास बात ये थी कि ये कहानी, गाने और भावनाओं को एक साथ संतुलित रूप से पेश करते थे। यही वजह रही कि इनकी फिल्में आम दर्शकों के साथ साथ समीक्षकों को भी पसंद आई और इन्होंने फिल्म आपकी कसम में राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को स्क्रीन पर चमकाया।
Today is the birthday of Subhash Ghai as the iconic director, screenwriter, primarily known for his work in Hindi cinema. और यूं ही नहीं कहा जाता उन्हें showman of India. और उनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी एक iconic फिल्म आई थी सौदागर, if you remember, जिसमें दो दिग्गज एक्टर्स को सामने स्क्रीन पर लाए थे. Let's listen to a dialogue and a song.
हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा।
बंदूक तेरी, गोली भी तेरी, दिन तारीख भी तेरा, सुबह बोले सुबह, शाम कहे शाम। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा।
इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल
और सायरा मुझे लगता है कि इतने बड़े दो दिग्गज कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म में लाना ही अपने आप में एक स्ट्रगल रहा होगा।
That's right, and balancing both of them. I remember this was actually the first movie that I saw as a child on the big screen. तो सौदागर की मेरी जिंदगी में बहुत ही खास जगह है, you can say, सर फिरोजी।
1945 में आज ही के दिन जन्मे सुभाष घई हिंदी सिनेमा के उन चंद फिल्मकारों में हैं जिन्होंने मनोरंजन के साथ साथ मूल्यों को भी पर्दे पर उतारा। कालीचरण, कर्ज, राम लखन और सौदागर जिसकी हमने अभी बात की, इसके अलावा ताल जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने परिवार, परंपरा और परिवर्तन की कहानियां कही।
और कर्ज की जो कहानी थी वो तो क्या ही लाजवाब थी, यू नो, जो दो जन्मों की कहानी है। एंड व्हाट म्यूजिक, सो लेट्स लिसन टू वन ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम दैट फिल्म।
दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दिल में जगाया आपने। पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने।
सुभाष घई को भले ही भारतीय सिनेमा का शोमैन कहा जाता हो, लेकिन असल पहचान उनकी उस सोच से बनी जिसमें सिनेमा सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि सामाजिक संवाद भी था। फिल्म संस्थान विस्लिंग वुड्स के जरिए उन्होंने नई पीढ़ी को सिनेमा की शिक्षा भी दी।
That's right. His films are noted for their iconic characters, grand sets, dramatic climaxes and themes of divine justice and duty. और उनकी बार बार म्यूजिक की तो फिल्मों की बात करें कि हर फिल्म में देखिए आप ऐसा गाना है कि जो हमेशा आप आज भी गुनगुनाते हैं। एक फिल्म उन्होंने बनाई थी परदेस, आई थिंक महिमा चौधरी का वो जो एक महिमा छा गई थी, यू नो, एवरीबडी वॉज फ्लॉर्ड बाय हर
रूप देखने को मिला उसमें।
Yes, by her beauty. तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना है। Let's listen to that.
चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको
श्रोताओं, इसके साथ ही इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा को। परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।